वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी तरह के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 14, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। अनंत ने आखिरी दांव खेलते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उस चीज को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें पूरे 100 साल इंतजार करना होगा। अनंत को सामने वाले इंसान के हाव भाव पढ़ने में महारत हासिल थी, लेकिन वो डकैत सरगना के हाव भाव समझ नहीं पा रहा था। डकैत सरगना ने हाथ में बंदूक उठा ली और अनंत के सिर पर तानते हुए कहा, एक बार वापस बोल जो बोला। लेकिन अनंत ने यह भी गौर कर लिया था कि अनंत की बात सुनकर उस बूढ़े के दिमाग में खलबली मच गई थी। शायद इसीलिए अनंत ने बड़ा जोखिम लेते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पूरे 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। अनंत की बात सुनकर डकैत सरगना तिलमिला उठा और चिल्लाया, साले भभूति बल्ली के सामने जबान लड़ाता है, ये ले। पता नहीं कि अगर वो बूढ़ा उसे नहीं रोकता तो वो ट्रिगर दबाता या नहीं, लेकिन अनंत ने इस बार मौत को बहुत पास से देख लिया था। वो बूढ़ा पता नहीं क्या चिल्लाता हुआ उस डकैत सरगना के साथ एक तरफ चला गया। अनंत का दिमाग एकदम सुन्न हो गया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, तो इसका नाम भभूति है, भभूति बल्ली। अनंत को फिर से हंसी आने लगी, लेकिन माहौल को देखकर उसकी हंसी काफूर हो गई। उसने देखा कि वो बूढ़ा और भभूति दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। बूढ़ा चिल्लाते हुए भभूति को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में वो दोनों उसके पास आए। इस बार उस बूढ़े ने कहना शुरू किया, तन्ने घणो पतो है तो तू भी मां के सागे है। अनंत राजस्थानी समझ लेता था, लेकिन उस बूढ़े की बोली उसे समझ नहीं आ पाई, इसलिए भभूति ने कहा, तू हमारे साथ चलेगा। अब अनंत ने कहा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथी भी मेरे साथ होंगे। भभूति ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन फिर हां में सिर हिला दिया। अनंत ने आगे पूछा, कहां चलना है?
जगह हम उस वक्त बताएंगे जब तू शंकु को लेकर आ जाएगा,
अनंत ने आखिरी बात कही। मुझे मेरी और मेरे साथियों की सलामती की गारंटी चाहिए, भभूति ने जवाब दिया।
तू शंकु की गारंटी ले, तेरी और तेरे साथियों की गारंटी मैं लेता हूं। आज शाम को 4 बजे वो शंकु लेकर हाईवे पर उसी जगह मिल जाना जहां अभी तेरी गाड़ी खड़ी है, और सुन ले, कोई शान पट्टी की ना। तो
भभूति ने बात पूरी नहीं की, लेकिन अनंत जानता था कि इस बात का क्या मतलब है। भभूति एक तरफ चला गया, अनंत वापस जीप की तरफ जा रहा था कि तभी उस बूढ़े ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बोली में कुछ बड़बड़ाने लगा। अनंत ने गौर किया कि वो जिस भाषा में बात कर रहा था वो भाषा ना तो राजस्थानी की कोई बोली थी और ना ही कोई ऐसी भाषा जिसे वो समझ सके। ये भाषा उसे कुछ कुछ संस्कृत जैसी लग रही थी, लेकिन पक्के तौर पर यह संस्कृत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। अनंत ने उस बूढ़े से कहा,
आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
उस बूढ़े ने धीरे धीरे कहा,
वो काल शंकु है, कोई ना माफ नहीं करे है।
काल शंकु?
हां, काल शंकु, कोई ना माफ नहीं करे है, ध्यान रख जो मारी बात।
मैं ध्यान रखूंगा, अनंत ने उस बूढ़े को जवाब दिया और जीप की तरफ बढ़ चला। थोड़ी देर बाद हाईवे पर उसे जीप से उतार दिया गया। अनंत ने कहा,
अरे वो जगह यहां से थोड़ी दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ेगा। और चाबी, गाड़ी की चाबी तो दो।
अरे अरे, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और जीप रवाना हो गई। थोड़ी देर में उसे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आते दिखाई दिए, जिन्होंने उसके हाथ में उसकी SUV की चाबी थमाई और उसकी बात सुनते बगैर चलते बने। करीब 5 मिनट तक चलने के बाद वो अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। तब तक सुशांत और ज्ञान भी वहां पहुंच चुके थे। उसे इस तरह आता देख सुशांत ने कहा,
मैं सोच ही रहा था कि पुलिस को फोन करूं या नहीं।
अनंत ने एसयूवी की चाबी सुशांत की तरफ उछालते हुए कहा,
ले ड्राइव कर, गाड़ी में बात करते हैं।
गाड़ी में अनंत के पूरी बात बताने के बाद भी सुशांत चुप ही रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा,
ये जो मोटरसाइकिल हमारे पीछे है, ये वही लोग दिखते हैं।
अनंत ने हां में जवाब दिया तो सुशांत ने तेजी से गाड़ी के ब्रेक लगाए। अनंत ने हड़बड़ाकर पूछा,
अरे क्या कर रहा है।
तब तक सुशांत गाड़ी से उतर चुका था। अनंत भी उसके पीछे पीछे उतर गया। वहीं गाड़ी को इस तरह रुकते देख मोटरसाइकिल सवारों ने भी कुछ दूरी पर अपनी मोटरसाइकिल रोक ली थी। अनंत ने सुशांत से पूछा,
गाड़ी क्यों रोक ली है।
सुशांत ने गाड़ी के बोनेट पर बैठते हुए जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाने लगा।
कुछ नहीं यार, बस सिगरेट पीने की इच्छा हो गई।
अनंत उन मोटरसाइकिल सवारों की तरफ देखते हुए हंसने लगा। वो लोग अभी भी वहां से कुछ दूरी पर खड़े थे। सुशांत ने उनको देखते हुए कहा,
क्या उम्र होगी इनकी।
ये तो बच्चे लग रहे हैं, अनंत ने जवाब दिया।
हां 20-22 साल से ज्यादा नहीं होगी, पर गलती इनकी भी नहीं है।
सुशांत ने कहा,
हां गलती तो उसकी होती है ना जो भुगतता है, जैसे अभी तू भुगत रहा है और तेरे पीछे पीछे हम भी भुगत रहे हैं।
सुशांत के व्यंग्य पर अनंत ने जवाब दिया,
असल में बचपन से इन्होंने यही देखा है। इन्हें यह समझ थोड़ी ना है कि स्कूल में पढ़ने से जिंदगी बदल सकती है। अब ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जब तक अक्कल आएगी तब तक वक्त निकल चुका होगा।
अनंत ने अपनी बात पूरी की लेकिन सुशांत तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद सुशांत ने कहा,
तो क्या सोचा है तूने,
अब तो ये नमूने भी पूंछ की तरह हमारे पीछे पीछे चलेंगे। अनंत ने सुशांत की आंखों में झांकते हुए कहा,
मैंने डिसाइड कर लिया है।
मैं उस कौन क्या नाम बताया था उस बुड्ढे ने,
हाँ
काल शंकु, मैं काल शंकु के साथ इन लोगों के साथ जा रहा हूं। सुशांत ने कहा,
तुझे पता है ना कितना रिस्क है,
वो भभूति कब तेरी भभूति बना देगा पता भी नहीं लगेगा, तुझे भरोसा है उस पर। अनंत ने जवाब दिया, 1% भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं इस काल शंकु का रहस्य जानकर रहूंगा। अनंत इसके नाम में ही काल है, तू समझ रहा है ना, इट्स नॉट सेफ। तेरी जान अभी तक बची है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी बच जाएगी।
कह तो सही रहा है तू, और आज सुबह गेस्ट हाउस से निकलने से पहले मैं ये सारी बातें सोच भी चुका था, लेकिन अभी जिंदा हूं।
अनंत की बात सुनकर सुशांत को गुस्सा आ रहा था, साले तू जिंदा रहने का अफसोस मना रहा है। लेकिन अनंत तो जैसे पक्का फैसला कर चुका था।
सुशांत देख यार, जो ये चीज है ना तूने देखी है, हमने बस कहानियों में पढ़ा है ऐसी चीजों के बारे में, मैं देखना चाहता हूं कि क्या है ये, कैसे काम करती है, क्या कर सकती है 100 सालों में एक बार।
बता, ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा। इंसान जब चांद पर पहुंचा था तब उसे पता था कि इस मिशन में जान जा सकती है, लेकिन उसने चांस लिया ना। कितने लोगों को ऐसी चीजें देखने का मौका मिलता है।
सुशांत ने एक कोशिश और की,
अनंत यार वो सब ठीक है लेकिन वो लोग कौन मिलते ही तुझे मार डालेंगे।
अनंत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं वो मुझे नहीं मारेंगे।
क्यों नहीं मारेंगे।
क्योंकि मैंने उस बूढ़े की आंखों में पढ़ा था, उसने बड़े विश्वास से मेरा हाथ पकड़ा था।
सुशांत उकता गया, अबे तो तेरा हाथ पकड़कर कोई मंत्र भी तो पढ़ रहा था वो, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया तुझ पर। और तू खुद ही तो बता रहा था, उस बुड्ढे ने कहा था ये काल शंकु है, इसे नाराज मत करना। इसके बाद थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। आखिर में अनंत ने कहा,
तू कुछ भी कहे मैं जा रहा हूं।
ये कहकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। सुशांत भी झुंझलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके बाद गाड़ी में कोई बात नहीं हुई। जब वो लोग वापस गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां बाहर ही उन्हें पुलिस की जीप दिखाई दे गई। सुशांत ने एसयूवी को थोड़ा दूर ही रोक लिया और रियर व्यू मिरर को देखते हुए अनंत से कहा,
अनंत अगर तू उन लोगों के साथ डील कर रहा है तो तुझे पुलिस से दूर रहना होगा।
हां यार, वरना भभूति सोचेगा कि हम लोग पुलिस के साथ मिले हुए हैं। सुशांत ने कहा,
खैर अभी तक तो वो मोटरसाइकिल यहां पहुंची नहीं है, हम उनसे काफी तेज थे।
मैं ऐसा करता हूं कि पुलिस को टरकाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो लोग कुछ करें इससे पहले ही पुलिस वाले गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर आते दिखाई दिए। ये बाहर क्यों आ रहे हैं? अनंत ये सोच ही रहा था कि वो लोग अपनी जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गए। उनके रवाना होने के बाद सुशांत ने एसयूवी को गेस्ट हाउस के सामने पार्क किया और दोनों गेस्ट हाउस में अंदर चले गए। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात कुंवर अनूप सिंह से हुई, जो अनंत का ही वेट कर रहा था। हेलो अनंत जी। अनंत को आश्चर्य हुआ था। अरे कुंवर साहब, आप? सुशांत, इनसे मिलो। ये कुंवर अनूप सिंह, मैंने बताया था ना तुझे। सुशांत ने अनूप सिंह को अपना परिचय दिया। हेलो, मैं सुशांत, हम लोग एक ही चैनल के लिए काम करते हैं। अनूप सिंह ने गर्म जोशी से उससे हाथ मिलाया, लेकिन फिर अनंत से थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, अनंत जी, मैंने कहा था कि आपको कुछ भी जरूरत हो तो बताइएगा, लेकिन आपके साथ पिछले दो दिनों में इतना कुछ हो गया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अनूप सिंह ने जिस अपनेपन के साथ कहा, अनंत से वाकई में जवाब देते नहीं बना। उसने शब्द जोड़ते हुए कहा, कुंवर साहब, मुझे लगा कि इतनी सी बात के लिए आपको क्या परेशान करूं। ये इतनी सी बात है क्या? मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि उसे ताज्जुब हो रहा है कि आप डकैतों के कब्जे से जिंदा कैसे बचाए, और कल रात को भी वो लोग आपके यहां गेस्ट हाउस में आ गए थे। अनंत ने कहा, हां, पता नहीं क्यों, शायद हमसे कोई ज्यादा लगाव हो गया उन लोगों को। अनूप सिंह ने कहा, अनंत जी, दो बार किस्मत आपकी मदद कर चुकी है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, और अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, यहां के लोकल में अच्छा होल्ड है अपना। थैंक यू कुंवर साहब, मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। अनूप सिंह वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अनंत से कहा, वो पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने अभी के लिए उसे वापस भेज दिया है, बाद में जैसी आपकी कन्वीनियंस हो आप एक बार उससे बात कर लीजिएगा। ये कहकर अनूप सिंह वहां से चला गया। सुशांत तो उसे देखकर इंप्रेस हो गया था, यार कौन था ये कुंवर साहब? अनंत ने आगे बढ़ते हुए कहा, रूम में चल फिर बताता हूं। कमरे में चुप्पी छाई थी, बाकी लोग अनंत को इस तरह घेर कर बैठे थे जैसे पूरा परिवार मिलकर जवान लड़के या लड़की को उसके प्रेम प्रसंग का पता लगने पर घेर कर बैठते हैं। आखिर में सुशांत ने कहा, तुझे जाना है तो ठीक है, मगर तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अनंत ने कहा, नहीं यार, शुरू में मैंने सोचा था कि यह हम सबके लिए एक अच्छा एडवेंचर होगा, लेकिन पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद ये काफी रिस्की हो गया है। यहां तक कि आज सुबह तक मैं यही सोच रहा था कि वहां मैं और सुशांत दोनों साथ चलेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने साथ किसी और की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। सुशांत ने कहा, अब फालतू के नाटक मत कर, तुझे वहां मेरी जरूरत पड़ेगी। अनंत के कुछ कहने से पहले ज्ञान ने कहा, और सर मेरी भी। रही सही कसर राज ने पूरी कर दी, सर मैं भी चलूंगा। सुशांत ने कहा, नहीं ये काफी रिस्की हो सकता है, अनंत और मैं ही जा रहे हैं। राज कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अनंत ने उसकी बात काटते हुए कहा, सुशांत ठीक कह रहा है, रिस्क बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग यहीं हमारा वेट करोगे। और अनंत ने बात पूरी नहीं की, लेकिन सुशांत ने आगे जोड़ा, और अगर कल सुबह तक हमारा कोई पता नहीं लगता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। ये कहकर वो हंसने लगा, लेकिन इस बार उसके अलावा कोई नहीं हंस रहा था। ऐसे में वो भी चुप हो गया। ज्ञान उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन अनंत ने उसे साफ मना कर दिया और एक 4x4 स्पोर्ट्स जीप का बंदोबस्त करने के लिए कहा। राज भी उसके साथ चला गया। उनके जाने के बाद सुशांत ने अपना बैग खोलकर कपड़ों के बीच से एक रिवॉल्वर निकाला और अनंत को दिखाते हुए कहा, इसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। चूंकि उन्हें अक्सर जंगल में जाना पड़ता था, इसलिए उनके पास चाकू तो था, लेकिन अनंत ने यह नहीं सोचा था कि सुशांत के पास एक रिवॉल्वर भी होगा। अनंत ने पूछा, तू हमेशा तो नहीं रखता इसे अपने पास? सुशांत ने रिवॉल्वर की नोक को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों इस बार दिल्ली से जब निकल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसे रख लेना चाहिए, शायद जरूरत पड़ जाए। अनंत ने कहा, भगवान करे जरूरत ना ही पड़े। सुशांत ने आगे कहा, लेकिन पड़ गई ना तो छक्के छुड़ा दूंगा उनके। सुशांत ने सही कहा था, असल में वो नेशनल लेवल का शूटिंग चैंपियन था, इसलिए अनंत ने हंसते हुए कहा, अरे वो भभूति देशी कट्टा लेकर तेरा मुकाबला कहां से करेगा। दोपहर के 3 बजे तक अनंत और सुशांत अपने आगे के सफर की तैयारी कर चुके थे। तब तक ज्ञान भी 4x4 स्पोर्ट्स जीप लेकर आ गया था। रेतीले इलाकों में एडवेंचर स्पोर्ट्स की वजह से किराए पर ये गाड़ियां वहां आसानी से मिल जाती थीं। गाड़ी को देखते ही सुशांत खुश हो गया। ये गाड़ी ठीक है, कवर्ड है, इसलिए खराब मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट हाउस से निकलने से पहले अनंत ने राज को याद दिलाया कि वो आज ही उस पेंटर भूप सिंह के बेटे के लिए किताबें देकर आ जाए। राज ने हामी भरते हुए अनंत और सुशांत से अपना ध्यान रखने के लिए कहा। इसके बाद सुशांत और अनंत दोनों जीप में अपने सफर के लिए रवाना हो गए। 4 बजने से कुछ पहले ही वो लोग हाईवे पर तय जगह पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में ही एक जीप उनके पास आकर रुकी। अनंत को इशारा समझ आ गया और उसने सुशांत से उस जीप के पीछे पीछे चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो जीप हाईवे से कच्चे रास्ते पर उतरकर एक उजाड़ जगह पर लगे एक तंबू के सामने जाकर रुक गई। अनंत के मुंह से निकला, एंड द गेम बिगिंस नाउ। आप सुन रहे थे काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 14, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल।